मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल के ऑडियो लेक्चर में आपने सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर का जो सिलेबस है उसके स्वरूप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। मुझे लगता है कि इसी के साथ ही अगर हम जो इसके प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर के तहत, अगर उनके स्वरूप को भी समझ लें तो शायद हमारे लिए ये और भी अधिक अच्छा होगा कि ठीक है, पाठ्यक्रम तो ऐसा है तो उस पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। सच पूछे तो प्रश्नों का जो स्वरूप होता है, प्रश्नों का जो रूप रंग होता है, वही हमारे तैयारी के शेड्स करने के तरीके को निर्धारित करता है। जो सबसे बड़ा जो मार्गदर्शन मिलता है, देखिए, वो प्रश्नों से मिलता है, सिलेबस से नहीं मिलता। सिलेबस तो आप उठा करके देख लीजिए, बहुत से ऐसे पेपर्स आपको मिलेंगे कि कॉलेज में भी वही सिलेबस है, सिविल सर्विस में भी वही सिलेबस है, स्टेट सिविल सर्विस में भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, आपके आईएएस में भी वही सिलेबस है। लेकिन जब आप प्रश्नों के स्वरूप को उठा करके देखते हैं तो उनमें रात और दिन का फर्क हो जाता है। मार्क्स जो इस आते हैं उनमें रात दिन का फर्क हो जाता है, और वो फर्क सिर्फ इस आधार पर आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और हमें अपनी तैयारी को प्रश्नों के पूछे जाने के तरीके के सांचे में ही ढालना होता है। मतलब हमको अपने आप को इस लायक बनाना होता है कि प्रश्न हम पढ़ें और फट से उसके उत्तर हमारे दिमाग में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम इत्मीनान से वहां बैठ करके उत्तर के स्वरूप के बारे में सोचेंगे, एक एक प्रश्न में क्या कौन कौन से पॉइंट्स देने चाहिए उसके बारे में सोचेंगे, उतना वक्त ही नहीं होता। और अगर आप उसमें वक्त लगाएंगे तो बट नेचुरल है कि आपके कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, और अगर प्रश्न छूट गए तो ये मान करके चलिए कि जो सफलता की जो ट्रेन है उसके भी छूटने की आशंका बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे यही कहता हूं कि प्लीज अनसॉल्व्ड पेपर हमेशा अपने टेबल पर रखें, और जब भी किसी टॉपिक की तैयारी करनी हो आप अनसॉल्व्ड पेपर उलटकर जानें कि पिछले 4-5 सालों में उस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे आप देखेंगे कि जो आपके पढ़ने का तौर तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो अब हम बात आइए करते हैं कि फोर्थ पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस फोर्थ पेपर में मित्रों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है एथिक्स। एथिक्स शब्द के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, नैतिकता। नैतिकता क्या होती है, इस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो नैतिकता के बारे में जो अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं उसकी डिटेलिंग उन्होंने दी है कि निजी जीवन में क्या नैतिकता होती है, सार्वजनिक जीवन में क्या है, प्रोफेशनल जीवन में क्या है, और इसके बाद जो सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है तो नैतिकता और धर्म में क्या फर्क है, नैतिकता और कानून में क्या फर्क है। ये सारी बातें अगर सिलेबस में डिटेल में नहीं भी दी हुई है तो किताबों में बकायदे दी हुई है, और जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट भी होती जाएंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है जिसके उत्तर आपको किताब में न मिले, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस को ही पूरी तरह से पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो पक्का जानिए कि अगर कोई नया तत्व आ भी गया है तो आपकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि आप बाकायदे उनके उत्तर दे लेंगे, इतनी क्षमता आप में पैदा हो जाएगी। तो एक जो मैंने आपको बताया कि नैतिकता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपसे कहा था कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर भी है। इसके बाद जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, जो इसके दो पिलर्स हैं, आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भले ही वो डायरेक्ट ना पूछे जाएं, इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो। तो ये तीन पिलर्स हैं, इन पर तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि उनकी तैयारी आपको होनी ही चाहिए, भले ही इस प्रश्न न पूछे जाएं, लेकिन जो केस स्टडी है उसमें वो आपकी मदद करेंगे। दूसरे तरह के जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो मैं खासकर आपके सामने अब 2 सालों के ही क्वेश्चन पेपर को आधार बनाकर बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातों में पिछले क्वेश्चंस भले ही ना आए लेकिन क्वेश्चन पेपर्स के स्वरूप जरूर आएंगे, राइट। एक तो 2018 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये चीज नहीं थी, लेकिन 2018 से पहले के जो पेपर हैं उसमें देखा गया है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको टिप्पणियां लिखने को देते थे, छोटी छोटी चीजों पर। उदाहरण के तौर पर कि पदीय कर्तव्य जिसको ऑफिशियल ड्यूटी कहते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर पूछा गया है। और बकायदे ये दिया गया है कि उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा खुद भी समझना होगा, समझाने से पहले उदाहरण सहित समझाइए। जब आप उदाहरण सहित समझाइए ये पढ़ते हैं तो आपके जो उदाहरण होने चाहिए, कोशिश कीजिए एक तो बहुत सटीक उदाहरण हो, दूसरे यदि साल डेढ़ साल दो साल में घटे हुए उदाहरण आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है और वो बहुत चर्चित उदाहरण होने चाहिए। और अगर चलिए वैसे नहीं भी आ रहे तो फिर तो आप किसी भी उदाहरण के जरिए अपनी बात को समझा दीजिए, लेकिन कोशिश ये हो कि बहुत ही ताजे उदाहरण हो, वो एग्जामिनर के मन में आपके प्रति एक विशेष लगाव पैदा कर देता है कि देखो ये स्टूडेंट अपने समय के प्रति कितना अधिक सतर्क है कि लेटेस्ट उदाहरण लेकर आ रहा है। इसी तरह से कुछ प्रश्नों के साथ पूछ लिया जाता है कि उसकी प्रासंगिकता बताइए, उसकी रिलिवेंसी क्या है, ये हमारे लिए आज के संदर्भ में क्यों उपयोगी है। तो देखिए जब आप प्रासंगिकता की बात करेंगे तो याद रखिए कि वो प्रासंगिकता के बारे में आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, महत्व तो पढ़ने को मिलेगा किताबों में, इंपॉर्टेंस और उसकी जो रिलिवेंसी है उनमें थोड़ा सा फर्क है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में वो रेलिवेंस क्यों है। बट नेचुरल है कि महत्व भी रेलिवेंस को बताता है, लेकिन अगर यह बात पूछी गई है कि आज के संदर्भ में बताइए, इसका मतलब है कि वो स्पेशली ये जानना चाह रहा है या टेस्ट करना चाह रहा है कि इससे संबंधित जो समस्याएं वर्तमान में पैदा हो गई हैं उन समस्याओं पर आपकी पकड़ है कि नहीं है, उन समस्याओं को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बट नेचुरल है कि अगर आप अखबारों से जुड़े हुए नहीं हैं, आप अखबारों से जुड़े ही रहेंगे, आप न्यूज से जुड़े हुए रहेंगे, तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक पता चलती रहेंगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आपको ऑटोमेटिक पता चलती रहेंगी। देखिए आप जब यात्रा कर रहे होते हैं या आप चाहे पैदल ही क्यों न चल रहे हों तो रास्ते के दोनों तरफ आपको ढेर सारी चीजें मिलती हैं देखने को, लेकिन अगर आप आधे घंटे की अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो उसमें से कितनी चीजें आपको याद रहती हैं बताइए, कितनी चीजें याद रहती हैं। और जो चीजें याद रहती हैं वो कौन सी चीजें हैं, सीधी सी बात है कि आप देख रहे हैं लेकिन उन्हें अपने दिमाग में दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोच नहीं रहे, तो वो चीजें भूल गई हैं, आंखों ने देखा, आंखों ने दिमाग में आपके पहुंचा दिया, दिमाग ने दर्ज भी कर लिया लेकिन दिमाग ने उस पर विचार नहीं किया, तो चीजें गायब हो जाएंगी। लेकिन आप जिसको भी रुक कर थोड़ा सा देखेंगे या देखने के बाद थोड़ा सा उस पर सोचेंगे या कहेंगे यार क्या सुंदर है, देखो ये कितना होर्डिंग, कितना खूबसूरत होर्डिंग है, ये कितना खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको याद रह जाएगा। जहां कोई घटना घटित हो जाएगी वो आपको याद रह जाएगा। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं मित्रों कि रोज आप अखबार पढ़ने की यात्रा कर रहे हैं, न्यूज सुनने की यात्रा कर रहे हैं और उन यात्राओं में बहुत से उन घटनाओं में बहुत से इन्हीं से रिलेटेड घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जिनको आप पकड़ेंगे नहीं स्पेशली, जिन्हें आप पकड़कर लिखेंगे नहीं, जिनके बारे में आप सोचेंगे नहीं, ये मान करके चलिए कि वो आपसे मिस हो जाएंगे, आप एग्जामिनेशन में उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी होता है कि कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं जिनमें इस तरह के मामले निहित होते हैं, आपको चाहिए कि आप एक अलग से रजिस्टर बना लें और उनमें उन घटनाओं को नोट करते चले और केवल थोड़े से पॉइंट्स नोट कर लें। आपको घटनाओं की डिटेलिंग नहीं लिखनी है, केवल उनका थोड़ा सा वर्णन कर देना है, बता देना है कि मामला क्या था, दो दो चार चार लाइन में लिख लीजिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को, बस दैट्स ऑल, और उन्हें फिर आप इसमें लिखेंगे, राइट। तीसरा जो इसका हिस्सा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2018 के पेपर में बहुत अधिक पूछा गया है, जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बकायदे कहा गया है कि इंडिया और वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड के जो फिलोसफर हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, उनकी जो टीचिंग्स हुई हैं उनके बारे में आप जानिए। मोरल टीचर्स हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के भी नाम, उनके बारे में आप जानिए। देखिए, अब ये बहुत लंबा चौड़ा खेल है, बहुत लंबा चौड़ा खेल है। और जब आप किताबें देख उठाएंगे तो आपको किताबों में दुनिया भर के ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उनकी जीवनियां क्या थी, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, वो क्या चाहते थे, पढ़ने को आपको मिलेगा। और मुझे मैंने महसूस किया है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये स्टूडेंट को बहुत बहुत और बहुत अधिक परेशान करता है, क्योंकि स्टूडेंट घबरा जाता है कि बाप रे हम कितना पढ़ेंगे कितना सुनेंगे। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, नीति और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल्य महान नेताओं सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा अंश उसमें दिया हुआ है। अब इसमें आप कितनों को लेकर के चलेंगे, कितनों किसको छोड़ेंगे किसको लेंगे, और इसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली वो क्या कह रहे हैं। देखिए ये तो एक पॉइंट हुआ, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, सिलेबस की दृष्टि से यह बहुत बड़ा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे छोटा है और सबसे फायदेमंद है। क्यों छोटा ये इसलिए है मित्रों कि आपसे, देखिए कभी कभार तो ये किया गया है, गांधी जी के 7 पापों का विवेचन पूछ लिया गया है, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत पूछ लिया गया है, कभी कभी ऐसा पूछा गया है, मतलब आपको नाम से लिखना है। लेकिन ज्यादातर सालों में, या कह लीजिए कि वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, अदरवाइज वो या तो सीधे सीधे कोटेशन दे देते हैं, उद्धरण दे देते हैं और कहते हैं कि इसे समझाइए, इसकी व्याख्या कीजिए, या फिर वो उद्धरण भी देते हैं और बाद में वह उद्धरण किसका है ये नाम भी दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको 2018 का एक प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में है, कोटेशन है कि नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप 3 गुणों को खोजते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे। इन्वर्टेड क्लोज, ये वॉरेन बफे का कथन है। और इसके बाद आपसे जो करने को कहा गया हुआ है वर्तमान परिदृश्य में, देखिए वर्तमान परिदृश्य मत भूलिएगा, वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू, वॉरेन बफे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, एक्सप्लेन। 150 शब्दों में बताना है और 10 नंबर का यह प्रश्न है। तो इस तरह की बातें दी गई हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा, ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सब के बिल्कुल उसमें न पड़े, चक्कर में न पड़े, इसकी तैयारी करने, चक्कर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं शब्द वापस लेता हूं, उसमें आप भ्रमित न हो। एक तो आप गांधी जी पर बहुत अच्छे से तैयार कर ले, नंबर 1, नो डाउट ही वॉज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी पर नाम से भी पूछा जाता है और गांधी जी पर जब आप तैयार करेंगे ना तो ढेर सारे दूसरे विचारकों के विचार एक्सप्लेन करने की आप में क्षमता पैदा हो जाएगी। तो गांधी जी पर आप खूब अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, पहली बात। दूसरी बात, 10-15 लीडर्स छांट लें जो आपको पसंद आते हो, अपनी पसंद के, और अलग अलग क्षेत्र के छांट लें, है ना, कुछ थोड़े से धार्मिक हों, कुछ समाज सुधारक हों, कुछ पॉलिटिकल लीडर हों, कुछ थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटर हों, इस तरह से 10 नाम छांट लीजिए, लेकिन थोड़े से अच्छे नाम हों, प्रभावशाली नाम हों, है ना। छांटने के बाद उनकी जो मुख्य मुख्य सिद्धांत रहे, जो क्वालिटीज रही हैं, केवल उन पॉइंट्स को लिख लें, बस खत्म हो गई बात, और उनको उनके थोड़े से एक्सप्लेनेशन देख लें, ये आपका तैयार हो जाएगा। और इस तैयारी के बाद जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें अगर उस क्या अगर हम 125 नंबर का उसे मान ले, 120, 130, 130, 120 का उसमें फर्क होता है। अगर हम उसे 125 नंबर का चलिए मान लेते हैं, तो मान करके चलिए कि आपके 20 से 30 नंबर के प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए मित्रों। तो इसीलिए उसको लेकर अधिक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनसॉल्व्ड पेपर बकायदे यह बात आपसे कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, कह तो मैं रहा हूं, लेकिन अनसॉल्व्ड पेपर मुझसे ये बात कहला रहे। और जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स, उसके बारे में तो अब मैं नहीं समझता कि इस विषय के अंतर्गत बात की जा सकती है, वो तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उसके लिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अनसॉल्व्ड पेपर लीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, अलग अलग तरीके से उनके हल ढूंढिए, फिर जो आपने हल ढूंढे हैं उनका फिर से विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या सबसे अच्छा विश्लेषण हो सकता है। यदि कभी समय मिला तो इस तरह के भी प्रैक्टिस हम लोग अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मुझे सामान्य अध्ययन का के जो पेपर्स होते हैं उनको आधार बना करके आपसे करनी थी, और मुझे विश्वास है कि इससे भी आपको एक तैयारी करने के रोड मैप को स्पष्ट करने में मदद मिली होगी। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आपके साथ हैं, और इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।